माधव कुंज बिहारी तुम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिपुराज का चरसोत्त श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की इताई गौर प्रेमानंदे हरि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशतारिणे शील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। तो आज श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 8 श्लोक संख्या 18 और 19 है। तो 19 में तात्पर्य है, 18 पढ़ देते हैं अनुवाद देखे। तनम दयम चाति किशोदरी समम निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम ततस्ततो नूपुर बल्ग सिंचित विशरपति हेम लते वसाबभौ। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुंकुम चूर्ण से लेपित है और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मन झंकार करते थे और वे सोने की किसी लता के समान लगती थी। 19 विलोकयंती निर्वध्यमात्मनः पदम ध्रुवम चाव्यभिचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेयादिषु नानवंदित विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना पदम ध्रुवम च व्यभिचारिणी सद्गुणम पदम ध्रुवम च व्यभिचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेयादिषु नान्वबन्धित विलोकयन्ति निर्वध्यमात्मना पदम ध्रुवम च व्यभिचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेयादिषु नान्वबन्धित विलोकयन्ति निर्वध्म आत्मना पदम ध्रुवम च अभिभिचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेयादिषु नान्वबन्धित।
What?
शब्दार्थ विलोकयंती निरीक्षण करती देखती निर्वद्यम किसी दोष से रहित आत्मनः अपने आप को पदम पद ध्रुवम नित्य च भी यह व्यभिचारिणी सद्गुणम गुणों में बिना किसी परिवर्तन के गंधर्व गंधर्व लोक के निवासियों सिद्ध सिद्ध लोक के निवासियों असुर दानों यक्ष यक्षों चारण चारण लोक के निवासियों त्रैपिष्ट पेय आदिषु तथा देवताओं में न नहीं अनबंधित किसी को स्वीकार कर सके अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की गंधर्वों यक्षों असुरों सिद्धों चारणों तथा स्वर्ग लोक के निवासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सब का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला, उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। अब दोहराइए, गंधर्वों यक्षों असुरों सिद्धों चारणों तथा स्वर्ग लोक के निवासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सब का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला, उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सके। तात्पर्य, क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थी, अतएव उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को इस योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। दूसरे शब्दों में इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के नैसर्गिक पति नारायण की क्षमता कोई भी नहीं कर सकता। 18 का अनुवाद पढ़ते हैं। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित है। उनकी कमर अत्यंत पतली थी, जब इधर उधर चलती तो उनके पायल मन चंकार करते थे और ये सोने की किसी लता के समान लगती थी। लक्ष्मी जी भी बहुत सुंदर हैं, नारायण की अर्धांगिनी हैं, इसलिए भी बहुत सुंदर हैं। उनके हाथ में कमल हैं जिस पर भंवरे गुंजार करते हैं, उनके कान में कुंडल है, चमचमाता हुआ कुंडल, और उनके गाल से जब स्पर्श करता है तो मानो जैसे बादलों में बिजली चमकती है, से बिजली बादलों में जब चमकती है कैसे प्रकाश हो जाता है, सोने की ऐसे लकीरें खींच जाती हैं। तो और बहुत सुंदर उनके वस्त्र हैं, उनके अलंकार सब वर्णन हुआ है। उनके केश बहुत सुंदर हैं, काले से लगता है अभी सुगंधित तेल से सींचा गया है, उनके शरीर में कुमकुम चंदन सुगंधित द्रव्य का लेप किया गया है, उनके केशों में बहुत अलग अलग प्रकार के फूल सजाए गए हैं, चलती हैं तो पीछे भौंरे भी चलते हैं, ऐसे फूल पर भौंरे गुंजार करते हैं। ऐसी लक्ष्मी जी सागर की पुत्री, सागर का जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी। क्षीर सागर मंथन देवता और दानों मिलकर किए तो इसमें अनेक वस्तुएं निकली थी, इसमें एक लक्ष्मी जी भी थी। इसे लक्ष्मी जी को सिंधुजा कहा जाता है, सिंधु की पुत्री, सिंधुजा सागर की पुत्री है, सागर ज। सागर कितने महान हैं, अभी क्षीर सागर, क्षीर सागर से तो ऐसे बहुत चीज निकला था, विष निकला पहले, श्री श्री रंभा विष वारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरी धन धेनु तरु चंद्र रमा मणिबाज निकले थे। श्री अरंभा स्वर की अप्सरा, विष बारूणी एक मादक द्रव्य मादक पेय पदार्थ है बारूणी, श्री रंभा विष बारूणी अमीय धन्वंतरी अमृत लेकर आए, लास्ट में अमृत लेकर आए धन्वंतरी। जिस अमृत के खोज के लिए देवता और दानव अथक प्रयास किए थे, मंदराचल पर्वत को ले आए थे मथने के लिए, मथानी मथानी मंदराचल पर्वत था, इतना बड़ा मटका है तो मथानी भी वैसा चाहिए ना, समुद्र मथना है तो साधारण मथनी से तो मंथन नहीं होगा, मंदराचल पर्वत पर लाया गया था, विशाल पर्वत जिसमें सोने की शिलाएं हैं, 1 लाख योजन में है ना, कितना योजन है, लगभग 1 लाख योजन में, इतना बड़ा। और देवता दानों मिलकर लाए थे, और उद्देश्य था अमृत पीना, कि समुद्र मथेंगे तो अमृत मिलेगा, जब ला रहे थे तो रास्ते में ही गिर गया, लाने में ही गिर गए, कितने लोग घायल हो गए देवता दानों, तब भगवान उनका इंजुरी रिपोर्ट देख करके सबका इलाज कर दिए, ऐसे देख दिए सब लोग ठीक हो गए, उत्साह कम हो गया था कि ये काम हो नहीं सकता है, फिर समुद्र में मंत्राचल पर्वत को ये किए तो अंदर डूब गया, मंथन दंड ही डूब गया, जो दही मथने का जो पात्र है उसी में मथनी ही डूब गया, मंदराचल पर्वत उसमें डूब गया बिल्कुल, अब दिखाई नहीं दे रहा था। देवता दाना और निराश हो गए कि ये काम होगा नहीं, छोड़ो कौन जाएगा ये कर, लाने में इतना भारी संकट और मथानी भी मंथन दंड भी मेरु पर्वत डूब गया, सब निराश हो गए। तब भगवान भगवान चाहते थे कि समुद्र मंथन हो, तब भगवान कच्छप अवतार लेकर के अंदर गए, अंदर जाकर उसको पीठ पर धारण किए, पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडू यनान, भगवान अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को इसे उठाए ऊपर आ गया, और देवताओं में शतोगुण के रूप में प्रविष्ट हुए और असुरों में तमोगुण के रूप में, उत्साह देने के लिए लोग निरुत्साहित हो गए थे, ये काम अब होगा नहीं, चलो चलते हैं, तो देवताओं में शतोगुण के रूप में और असुरों में तमोगुण के रूप में प्रवेश करके सब लोग उत्साह में हो गए, फिर साबस साबस करने लगे कि हाँ अब तो मथ लेंगे हम लोग, इतना उत्साह हो गया। आज मथने लगे, वासुकी को नेति बनाया गया था, तो भगवान कच्छप के पीठ पर घूम रहा था बहुत तेजी से, पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडू ये नान, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, कच्छप भगवान को कंठा कृते भगवते, तो उनको नींद आ गई भगवान को, जैसे कोई मसाज करता है ना वैसे निदान, और उनके श्वास वायु से समुद्र विदलित हो गया। यातायात मतंद्रितम जल निधे नाद्यापि विश्राम्यति। आज तक समुद्र जो है आंदोलित होता है भगवान कच्छप के श्वास वायु से, तो कोई को तो क्षीर सागर मथा गया थे कैसे होता है। तब परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज कह रहे थे कि सब समुद्र का लिंक है, कहीं ना कहीं से लिंक है। तो महाराज कह रहे थे कि कच्छप भगवान के श्वास वायु सोने पर श्वास वायु तेज हो जाती है ना, जब कोई कोई सोता है तो ऐसे नाक बजने लगता है, पेट ऊपर जाता है नीचे आता है, यार आवाज होता है ऐसे आवाज आता है किसी किसी का, हम लोग देखे हैं, और पेट ऊपर नीचे ऊपर, तो सोने पर श्वास वायु तेज हो जाती है। तो भगवान भी सोए ना तो उनको नींद आ गई, जैसे मथानी घूम रहा था उनके पीठ पर, पृष्ठ भ्रामित मंद मंदर गिरी, उनके लिए जैसे मानो कोई खुजला रहा है, बोलना थोड़ा खुजलाइए, खुजलाने पर बड़ा अच्छा लगता है, खुजली खुजलाए स्वर्ग का मजा पाए, खुजली हो तो खुजलाने में और अच्छा लगता है। तो भगवान सो गए, तो भगवान कच्छप अवतार लिए और ऊपर अजित रूप में मथानी को बैलेंस करने के लिए, मथानी में तीन रस्सी होता है, एक स्तंभ होता है उसके नीचे रस्सी होता है ऊपर भी, और बीच में नेती होता है, नेती बोलते हैं ना से मथने के लिए, तीन रस्सी उस स्तंभ से बंधा सपोर्ट रहता है तब मथा जाता है। तो भगवान मंदराचल पर्वत को नीचे भी सहारा दिए थे और ऊपर अजित रूप में, अजित अवतार में चार अवतार लिए, समुद्र मंथन में भगवान चार अवतार लिए, कच्छप अजीत धन्वंतरी और मोहिनी, चार अवतार हुआ। बड़ा प्रसिद्ध लीला की भगवान चार अवतार लिए इस लीला में। अमृत मिला तो बांटने में विवाद हो गया, अहम पूर्वम, मैं देवताओं से छीन कर सुर लोग भागे, बोले मैं पहले पीऊंगा, तुम क्या किया था, ज्यादा मेहनत मैंने किया है ना, अहम पूर्वम न तुम। तो देवता लोग हक्का बक्का गए, तब भगवान मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाए। तो यहाँ समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी, जबकि भगवान की अर्धांगिनी है, उनके वक्षस्थल पर निवास करने वाली हैं, लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो इतनी सुंदरी थी, उनको सब लोग देते कि हमारी पत्नी हो सकती हैं, सब लोग देख रहे थे, यक्ष की नर गंधर्व सिद्ध देवता सारे लोग के बासी, जन लोग तप लोग महर लोग सत्य लोग सिद्ध लोग गंधर्व लोग चारण लोग सारे लोग देख रहे थे कि काश मेरी पत्नी हो जाती, सबके मन में अभिलाषा हो गई इतने देख करके। लक्ष्मी जी इतना सुंदर थी कि सबका मुंह जो है सबका मन मोह ली, रूपवा मनवा मोहले बा उनका रूप है, सब लोग मोहित होके देख करके, सब लोग देख रहे थे कि लक्ष्मी जी जो स्वयंवर में चल रही थी, देख रही थी, चारों तरफ घूम रही थी कि हमारे योग्य कौन पति, किसी को अपने योग्य नहीं पाई। इस संसार में इस ब्रह्मांड में जितने लोग भी हैं, कोई ना कोई दोष तो ही है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, केवल भगवान ही सर्वगुण संपन्न है, यहाँ तक कि देवता शिव ब्रह्मा आदि भी, उनमें भी कोई ना कोई दोष है। लक्ष्मी जी किसी को भी देख करके सबको रिजेक्ट करते, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कोई सोचता होगा कि अब माला पहनाएंगी, अब कोई आगे आ जाता होगा कि शायद हमको नहीं देखी होंगी कैसे नारद जी को एक बार मोह हो गया था। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, बोले कि मैं काम को जीत लिया हूँ, जितेंद्रिय शिव जी तो काम को जला दिए, जीते नहीं ब्रह्मा जी भी काम के अधीन रहते हैं, काम इच्छाएं उनमें भी प्रबल हो जाती है। नारद जी अपना स्तुति गान कर रहे थे, आत्म प्रशंसा, मैं काम को जीत लिया हूँ, भगवान लोग बहुत अच्छा काम किए। यद्यपि हमारे पिताजी भी काम को वश में नहीं किए, शिव जी भी कमारी हैं लेकिन काम को जीत नहीं पाए, जला दिए। भगवान के एक बहुत अच्छा आपको अवार्ड देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। भगवान कुछ समय के बाद सोचे कि नारद जी को ये थोड़ा ईगो हो गया है। कभी कि हम लोग को ईगो होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो नारद जी को थोड़ा ये दिखाने के लिए भगवान माया का एक सृजन किए, एक नगर बना दिए। नारद जी वहां से चले जाने लगे तो आगे गए कुछ दूरी पर तो एक बहुत सुंदर नगर, और नगर की सुंदरता वर्णन है, वहाँ के राजा, वहाँ के प्रजा बहुत सुंदर थे। नारद जी को बहुत अच्छा लगा कि सुंदर देश है। और नगर में प्रवेश किए तो राजा स्वागत किए राजमहल में, क्योंकि बहुत सौभाग्य है कि आप आए हैं, हमारी बेटी का हस्त देख दीजिए, स्वयंवर होने वाला है। नारद जी हाथ देखे तो बोले कि गुणों में लक्ष्मी के समान, जो इसे शादी करेगा नारायण के समान हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, सरगुण संपन्न हो जाएगा। तो नारद जी हाथ देख करके कि काश मैं ही इसका दूल्हा बन जाता, मेरे साथ ही शादी क्यों न हो जाए। इतना गुण का वर्णन था हाथ देखे तो उसे कि मैं ही शादी कर लेता हूं। तो नारद जी सोचे कि लेकिन मेरा रूप तो बेकार है, इतना सुंदर नहीं, तो भगवान के पास गए, भगवान के पास चलते हैं, इतना भजन किए हैं, कभी कुछ मांगे नहीं हैं, उनका रूप मांग लेंगे। भगवान का रूप बहुत सुंदर है, बाजनूप रूप भेषवा, यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, पित पट पे सुलट पे मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मई सांवरी पे। भगवान का पित पट सुलट, उनके केश, उनका हर चीज इतना आकर्षक है कि जहां दृष्टि जाती है वहीं उलझ जाती है। चिरताकर्षक नहीं कौन अवे, नेत्र प्रतिवस्तु पर है उलझते, विधु बदन पे नयन पे चरण पे, विधु बदन पे नयन पे चरण पे, व्यक्ति पे बाम पे बल्ल। तो भगवान का ऐसा कौन अंग है जहां चित्त नहीं आकर्षित, चिताकर्षक नहीं कौन अव्यय, हमारे चित्त को कौन सा अंग है जो आकर्षित न करता हो। हमारा हृदय लुट जाता है भगवान के सौंदर्य पर। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन बोलते हैं ना, मेरा हृदय चोरी हो गया, भगवान इतने सुंदर हैं। चिताकर्षक नहीं कौन अव्यय, उनका ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो आकर्षित न करता हो दृष्टि को। दृष्टि जहां जाती है नक्षिक वहीं रह जाती है, उनके श्रृंगार का क्या वर्णन किया जा सकता है। का श्रृंगार वही वर्णन हो राजा, वहीं के श्रृंगार वहीं पे, भगवान के श्रृंगार का वर्णन क्या कर सकता है कोई, उसका कोई उपमा नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं, नेत्र प्रतिवस्तु पर हैं उलझते, विधु बदन पे नयन पे चरण पे, कंज कर पे हरित बांसुरी पे, भगवान हर चीज बहुत आकर्षित है। तो भगवान के रूप को नारद जी बोले कि उनका रूप रहेगा तो मैं एक कंपटीशन में पास हो जाऊंगा। तो भगवान के पास गए तो भगवान सब बोले कि नारद जी कैसे आगमन हुआ, बहुत जल्दी आ गए। तो प्रभु एक चीज मांगने के लिए आया हूं, नारद जी के एक चीज मांगने के लिए आया हूँ उधार में। बारात विवाह में लोग उधार मांगते हैं ना, पैंट शर्ट जूता चेन है अंगूठी है, दूल्हा भी कभी कभी उधार मांग कर लाता है। कभी कभी लोग बारात करने जाते हैं ना शादी विवाह में, तो दूसरे का सूट बूट ले लेते हैं, या आजकल तो भाड़ा पर भी मिलता है। तो नारद जी कहे कि प्रभु मैं आपका बहुत भजन किया हूं, अभी तो कुछ मांगा नहीं हूं, एक चीज मांगने के लिए आया हूं। बोले क्या मांगिए? अतः अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान की ही ये थी, सब नाच नचावे राम गोसाई, वो तो भगवान की ही प्रेरणा थी। भगवान बहुत अच्छा है, ले जाइए। रूप अपना दे दिए और मुख बानर का दे दिए। और नारद जी इतने हड़बड़ाहट में थे कि मेकअप रूम में जाकर देखे नहीं, आईना में देख लेना चाहिए था ना कि कैसा है। इतना जल्दी था, हड़बड़ में गड़बड़ हुआ। भगवान बोले ले जाइए, इतना जल्दी में भागे कि स्वयंवर में देर न हो जाए, फ्रंट वाला सीट बुक न हो जाए। रूप मुंह नहीं देखे। अब स्वयंवर में लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के घूम रही थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्षण में पूरा सृजन कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड का सृजन कर सकते हैं। तो माला लेकर घूम रही थी लक्ष्मी जी, नारद जी की तरफ नहीं देखते। नारद जी दौड़ करके सामने हो जाते थे, अब माला डालेंगी, फिर ऐसे कनी काट जाती थी। फिर नारद सोचते क्या बात है, कुछ कमी है क्या, भगवान की आराधना में कुछ कमी हो गई क्या। भगवान के इतना भजन किया हूं, भगवान ने रूप दिया है, कुछ कमी तो है ना। फिर जाते थे, सामने खड़े हो जाते थे। तो शिव जी के गण बोले क्या उछल कूद कर रहा है, पानी में मुंह तो थोड़ा देख लो, आईना नहीं था। तो लक्ष्मी जी नारायण को माला डाल दी चली गई। तो शिव के गण कहे कि क्या उछल कूद कर रहा है बानर की तरह, मुंह तो थोड़ा देखो। सही में देखे तो बानर का मुंह था। तो नारद जी को बहुत क्रोध हुआ, लगे हम पैसा एक ही है, आप मजा चखाए, आपको भी हम मजा चखाएंगे। अभी स्त्री के विरह में बन बन भटकेंगे और रोएंगे, और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। साप दे दिए भगवान, साप दे दिए। तो यहां भी स्वयंवर में लक्ष्मी जी जयमाल लेकर घूम रही थी। कैसे जानकी जी स्वयंवर में माला लेकर घूम रही थी कि कोई धनुष तोड़ेगा। तो गाना गाते हैं, सीता जी भी बहुत चिंतित थी, लगता है धनुष टूटेगा नहीं क्या। सारे लोग निराश हो गए थे जनकपुर के, अब महाराज जनक भी निराश हो गए कि अब लगता है पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, मैंने गलत किया संकल्प लेकर के, अब लगता है सीता का विवाह नहीं होगा। वैसे ही लक्ष्मी जी जयमाल लेकर घूम रही थी और सबको देख रही थी। यहाँ तक कि गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। असुर थे, असुरों में भी बड़े बड़े असुर। असुरों में कौन आए होंगे, प्रहलाद तो नहीं आए होंगे। बलि महाराज तो नहीं आए होंगे, कोई मनचले लोग आए होंगे, सिद्ध लोग भी आए थे। सिद्ध थे, चारण थे, स्वर्ग लोक के निवासी थे, सब लोग थे। लक्ष्मी जी घूमते घूमते देखी, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है, इस संसार में कोई भी दोष रहित नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति में कोई न कोई दोष है, उनमें कोई भी दोषों से रहित नहीं था, सब में कुछ न कुछ दोष था। अतएव किसी की भी शरण नहीं ग्रहण कर सकी हूं, इसलिए शरण्य भगवान ही है। शरणम शरण्यम, भगवान ही शरण्य है। चाहे किसी भी परिस्थिति में भगवान के अतिरिक्त और कोई जो है सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। तो पति उसी को बनाना चाहिए जो सर्वगुण सम, जो मुक्ति दे सके। सबके पति भगवान ही है वास्तव में, सारे पुरुषों के स्त्रियों के जगत पति हैं, तिरुपति हैं, अनंत कोटि जीवों के जीवपति हैं, अखिल जीवापति भगवान। लक्ष्मी देखी कि नहीं कोई योग्य नहीं है। एक बार परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज कथा में बता रहे थे कि भृगु एक बार परीक्षा लेने चले, भृगु मुनि तो शिव जी के पास गए, तो शिव जी स्वागत में उनका लिंगन करने आ रहे थे। भ्रक मलेच्छ कहीं का अघोर पंथी, मुंडमाल पहना है, हड्डी पहना है, भस्म लगाया है, कभी स्नान नहीं कर, दूर रहो बानर की आंख जैसे। तो शिव जी को ऐसा कहे कि अगर दूर रहो, टच मत करना, श्मशान में रहने वाला भस्म लगाता है श्मशान का, मंडमाल पहना है, कभी नहाता भी नहीं, दूर, ऐसे कहे। तो शिव जी को गुस्सा आ, त्रिशूल लेकर मारने, शिव जी त्रिशूल लिया और मारने के लिए चले, परीक्षा लेने गए थे। तो परीक्षा हो गई, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, बहुत गुस्सा में आ गए कि कैसा नालायक लड़का है, प्रणाम नहीं करता है बाप को, बहुत गुस्सा हो गए। वहां से चले विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु बोले कि आलसी कहीं का, हमेशा सोए रहते हो सांप पर, हैं? जब देखो तब सांप पर सोया रहता है, धड़ाम से एक लात मारे, आलसी कहेंगे, न काम न धंधा, तेरा रोटी बंधा, केवल वही सांप के बेड पर सोए रहता है, जोर से लात मारे छाती पर। भगवान उनके चरण को पकड़ लिए, सहलाने लगे कि हे विप्रदेव, आपके चरण में तो चोट तो नहीं आ गई, आपके चरण तो बहुत कोमल हैं, हमारा वक्षस्थल जो है वज्र जैसा बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट आ गई होगी, वंदना करने लगे। तो भृगु समझ गए कि हाँ कितना अंतर है, जोर से मारे फिर भी गुस्सा नहीं हुए। शिव जी को तेकोल कहे कि तुम बहुत गंदगी में रहते हो, अघोर हो, नहाते नहीं हो, मुनवाल पहने, तभी गुस्सा मारने चले। अब ब्रह्मा जी को तो केवल प्रणाम नहीं किए, तभी गुस्सा हो गए कि जान ले लेंगे। लेकिन भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न है, उनमें काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर कोई संसारी विकार नहीं होता है, तीन गुणों से परे हैं कि मारने के बाद भी किसी को लात मार दीजिए तो क्या करेगा, आपका हालत खराब कर देगा कि नहीं, वो भी सोए में उसके छाती पर अगर लात मार दीजिए तो आपका क्या हालत कर देगा तो सोच नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान देखिए उसके ठीक विपरीत वंदना करने लगे, हे ब्रह्मण्य देव, आपके चरण में तो चोट लग गई होगी, इसलिए भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, भगवान कभी उद्वेलित नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। इसे लक्ष्मी जी देख रही थी कि हमारे योग्य कोई पति है क्या, यक्ष की नर गंधर्व सिद्ध सारे लोग थे, देवताओं देवलोक के भी वासी थे, लगे किसी को अपने योग्य नहीं समझी कि सर्वगुण संपन्न केवल भगवान है। इसलिए लक्ष्मी जी सब अपने प्रत्याशी का निरीक्षण करते करते अंत में उन्हें भगवान को ही योग्य समझा। इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के नैसर्गिक पति नारायण की समता कोई भी नहीं कर सकता है, नारायण की क्षमता कोई नहीं कर सकता है, भगवान इतने सर्वगुण संपन्न है। विलोकयंती निर्वध्यमात्मन पदम ध्रुवम चा यभिविचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेय आदिशु नान्व वंदित आदिशु, अन्य अन्य जगह के भी लोग आए होंगे, ब्रह्मलोक से भी आए होंगे, आदिशु मतलब पूरे ब्रह्मांड से लोग आए थे, सारे देश विदेश जन लोग तप लोग महर लोग सत लोग सिद्ध लोग गंधर्व लोग तल अतल बीतल सुतल तलातल महातल सब जगह के लोग आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कोई उनके योग्य नहीं है, नारायण की समानता कोई नहीं कर सकता है, समानता ही नहीं कोई कर सकता, अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं है। बिलो के अंत निरीक्षण करती देखती देखती जाती थी, देखते थे सब लोग रिजेक्ट कर दें। क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थी, अतः वे स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की, अतः उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया किंतु किसी को इस योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। ये मूर्ख लोग हैं कि जो अन्य दूसरों की शरण में जाते हैं, कोई भूत प्रेत की शरण लेता है, कोई जादूगरी सीखता है, कोई तंत्र मंत्र का आश्रय लेता है, कोई अन्य लोगों को ही भगवान मान लेता है, कोई साधारण व्यक्ति को भी लोग भगवान मान लेते हैं, कोई थोड़ा चमत्कार दिखाया तो मानते हाँ ये भगवान, कोई धूल लेकर के पैसा बना दे बोले हाँ ये भगवान है, कोई आपका कुछ बता दिया कि हाँ आपका ये नाम है ना, आपका ये गांव है ना, हाँ हाँ भगवान है। लक्ष्मी जी ऐसे कहाँ कर सकी कि बहुत ऊंच ऊंच लोग के वासी आए थे लेकिन भगवान का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस संसार में लोग थोड़ा भी कुछ कोई किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा मोटर गाड़ी हो जाए, बहुत बड़ा मंदिर बना दे तो बोले हाँ ये हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी सिद्ध हैं, हमारे गुरुजी परम हंस हैं, ऐसे लोग बोल देते। कुछ चमत्कार हो जाता है तो बोलते हैं हाँ हमारे गुरुजी भगवान हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। भगवान क्या अवतार हैं, लक्ष्मी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सबको देख करके देखा कि नारायण ही कृष्ण ही आश्रय के योग्य हैं। सुरदास जी ने एक पद लिखा है कि परम गंग को छाड़ी महातम दुर्तम कूप खनावे, बहुत लोग गंगा हरिद्वार में हैं, हर की पौड़ी पर पानी के लिए कुआं खोदते हैं, पत्थर काटते हैं। परम गंग को छाड़ी महातम दुर्तम कूप खनावे, या कुछ लोग काम धेनु गाय को निकालकर बकरी लाते हैं, बकरी या भेड़ का पालन करते। सूरदास प्रभु काम धेनु चेदि छेरी कौन दुहावे, भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेना वैसे ही है जैसे कोई काम धेनु गाय को घर से निकालकर एक बकरी खरीद करके सेवा करते। तो लक्ष्मी जी जानती हैं कि नारायण ही शरण्य है, नारायण का ही शरण लेना चाहिए। इसे लक्ष्मी जी के इस आचरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का शरण नहीं लेना चाहिए, भगवान ही वंदनीय है। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान का ही शरण लेना चाहिए। इस श्लोक के द्वारा ये शिक्षा है कि भगवान को का ही शरण लेना चाहिए। लक्ष्मी जी ने केवल भगवान को शरण आश्रय लिया। बिलोकयंती निर्वद्यात्मन पदम ध्रुवम च अभिविचारिणी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेयादि सुनानुवंदित। लक्ष्मी ने और किसी सबको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भी ठीक है, इनमें भी ये दोष है, ये दोष है। इस संसार में हर व्यक्ति में दोष तो है, ये है हम लोग में केवल दोष ही दोष है, गुण है नहीं किसी में, सब दोष कलौ दोष निधे राजन। इस कलि युग में तो केवल दोष ही दोष है, कोई कहेगा कि नहीं मैं ये हूं, मैं बहुत सात्विक हूं या मैं बहुत बड़ा सिद्ध भक्त हूं, तो बेकार है। सब दोष का खजाना है, हम लोगों के हृदय में केवल दोष ही दोष है, इसको निकालने पर भी नहीं निकलता, फिर शायद वैसा ही हो जाए। बहुत प्रयास करने पर भी मन फिर वहीं के वहीं आ जाता है, इसलिए भगवान ही शरण्य है और उनका ही शरण लेना चाहिए। लक्ष्मी जी यही की कि बहुत लोग थे, बहुत ऐश्वर्यशाली लोग थे, बहुत प्रभावशाली लोग थे, बहुत धनी थे, बहुत सुंदर लोग भी आए थे, बहुत कलाविद, नहीं लक्ष्मी जी ने किसी को वरण नहीं, केवल भगवान को वरण किया। हरे कृष्ण धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की बांट दीजिए।